समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
श्रोताओं, ये शहनाई वादन जो आप सुन रहे हैं, इसे बजाया बिस्मिल्ला खान ने है। आज हम उनको इस कार्यक्रम में याद करेंगे, क्योंकि आज के दिन से है उनका नाता और बिस्मिल्ला खान एक ऐसा नाम जो शहनाई का पर्याय बन गया। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज ये कार्यक्रम आज सवेरे जो न्यूज मैगजीन प्रोग्राम है, इसे लेकर हम स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार देवेंद्र, एंड वेलकम अलोंग लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। Well, it's a new day, and a new day brings new beginnings, new hopes, and our program brings you the latest national and international news, metro city updates, and we'll be exploring the history of today, that is 21st August. All of this and much more coming up for you, so let's get started with the headlines, shall we?
जी, जी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की यात्रा पर पोलैंड और यूक्रेन रवाना हो रहे हैं। पोलैंड की राजधानी वारसो में श्री मोदी का रस्मी तौर पर स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बातचीत करेंगे और वहां के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी भेंट करेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों, व्यापार प्रतिनिधियों और भारत के प्रमुख छात्रों के साथ भी बातचीत करेंगे।
India has called on Japan to remove regulatory bottlenecks that exist in sharing of critical technologies. At third 2+2 dialogue in New Delhi yesterday, India and Japan agreed to prepare a new framework for security cooperation in line with the desire to further expand the overall strategic ties. Indian delegation at the talks was headed by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Defence Minister Rajnath Singh. Japanese team was led by Foreign Minister Yoko Kamikawa and Defence Minister Kihara Minoru. In his remarks, Dr. Jaishankar said both sides discussed the unfolding new avenues for technology, research and industrial cooperation, including in the field of defence. Dr. Jaishankar said that a free, open and rules-based Indo-Pacific is the top priority for both the countries.
2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ ट्रैक सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। भारत और यूरोपीय संघ ऑनलाइन कट्टरपंथ से उभरते खतरों पर चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन में आतंकवाद के ऑनलाइन खतरों से मिलकर निपटने के रास्ते तलाशे जाएंगे। ये सम्मेलन डिजिटल आतंक के विरूद्व लड़ाई में अग्रणी दक्षिण एशिया और यूरोप के प्रवर्तन अधिकारियों, शिक्षाविद, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य यूरोपीय संघ की हिंद प्रशांत रणनीति के साथ क्षेत्र में आतंकवाद निरोधक संवाद और साझेदारी को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम भारत और यूरोपीय संघ के बीच जारी आतंकवाद निरोधक सम्मेलनों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इसमें ड्रोन आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, गलत सूचना और भ्रामक सूचना जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
Union Public Service Commission UPSC has cancelled the advertisement related to lateral entry in the bureaucracy following the directions from the Department of Personnel and Training. Earlier yesterday, the government asked the UPSC to cancel the advertisement related to lateral entry in the bureaucracy. This comes a few days after UPSC issued an advertisement to appoint 45 joint secretaries, directors and deputy secretaries in central ministries, which was questioned by the opposition parties. Responding on the issue, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the decision to align lateral entry with principles of reservation shows Prime Minister Narendra Modi's commitment to social justice.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस साल जून में 19,29,000 नए सदस्य जोड़े हैं, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 7% अधिक की वृद्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि सदस्यता में हुई इस वृद्धि को बढ़ते रोजगार के अवसर सहित कई कारकों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष जून के दौरान लगभग 10,25,000 नए सदस्यों ने नामांकन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी नेता राम माधव और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। केंद्र शासित प्रदेश में 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान होगा।
Vice President Jagdeep Dhankar will address the inaugural session of 19th CII India-Africa Business Conclave in New Delhi today. The theme of the three-day conclave is Creating One Future. The conclave focuses on the three-day conclave and in areas such as trade, investment, infrastructure, healthcare and technology. The conclave began yesterday. More than 1,100 international delegates from 65 countries, out of which 47 are African nations, are participating in the conclave. Now talking about the weather, India Meteorological Department IMD has issued orange alert warning for rainfall over eastern, northeastern and southern parts of the country for the next few days. According to IMD, heavy to very heavy rainfall is expected over West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha, Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura till 25th of this month. Isolated heavy rainfall is also very likely over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Lakshadweep, coastal Karnataka, coastal Andhra Pradesh, Rayalaseema, Telangana during the same period. Isolated very heavy rainfall is very likely over Kerala and Mahi today. The weather department also forecast isolated heavy rainfall over Himachal Pradesh and Uttarakhand till 26th of this month. In Delhi, the IMD forecast a generally cloudy sky with light rain and thunder showers throughout the week.
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित कर दिया है, परंतु बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस आयोजन का आधिकारिक मेजबान बना रहेगा। टूर्नामेंट 3 से 20 अक्टूबर के बीच दुबई और शारजाह में खेला जाएगा। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी जोफ एरलाडिस ने इस फैसले की पुष्टि की है। उन्होंने मूल योजना के अनुसार टूर्नामेंट बांग्लादेश में आयोजित न किए जाने पर निराशा भी व्यक्त की है। टूर्नामेंट को बांग्लादेश से यूएई में स्थानांतरित करने का यह फैसला बांग्लादेश में चुनौतीपूर्ण स्थिति और एक सफल तथा सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए आईसीसी की प्रतिबद्धता रही है।
Now let's talk about wrestling. India's Ronak Dahiya clinched a bronze in the Greco-Roman 110kg category at the ongoing Under-17 World Wrestling Championship in Amman, Jordan. The current world number 2, Ronak, defeated Turkey's Emirullah Kapkan 6-1 in the bronze medal match. Earlier, Ronak had lost the semi-final bout by 0-2 against his Hungarian opponent Zoltan Kzako.
आज सवेरे कार्यक्रम में मुख्य समाचारों के बाद हेडलाइंस के बाद अब हम रुख करते हैं महानगरों का और जानते हैं क्या खबरें हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से। शगुन से।
यस देवेंद्र, वील बिगिन विद चेन्नई। द स्टेट गवर्नमेंट रिव्यूड द प्रिपेयरनेस ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज इन व्यू ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयरिंग मंकी पॉक्स अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। द डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स आर आस्क्ड टू एनहांस द सर्वेलेंस मैकेनिज्म एंड कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स। द गवर्नमेंट हैज डेजिग्नेटेड द किंग इंस्टीट्यूट एट चेन्नई एज द अप्रूव्ड एंड आइडेंटिफाइड सेंटर फॉर टेस्टिंग ऑफ मंकी पॉक्स। हाउएवर, देयर हैज नॉट बीन एनी केस ऑफ मंकी पॉक्स सो फार। More news from Chennai. The Tamil Nadu government will be installing 2 Doppler weather radar in Yerkod and Ramanathapuram to enhance cyclone tracking. These additional radars will be covering regions currently outside the range of existing radars in Chennai, Karaikal and Sriharikota. The government has floated a tender for the Doppler radars. At present, Chennai city is covered by 2 radars, an S-band radar at port and an X-band radar at NIOT campus, and 2 S-band radars, 1 each, are in Karaikal and Sriharikota. Well, staying with Chennai, the Wildlife Crime Control Bureau has alerted airports in Chennai, Bengaluru and Hyderabad to look out for suspicious baggage, as there have been a spike in renewed demand for the species of exotic pet markets of Malaysia. Last year, 369 star tortoises that were seized by customs officer at the Chennai airport. At least 3 smuggling attempts to smuggle 1,383 star tortoises were thwarted by the customs officials. The Air Intelligence Unit of the Customs identified found star tortoises wrapped in child diapers. In total, 778 star tortoises were seized and handed over to the wildlife warden to be released in the Gindi National Park. Now let's focus on Bengaluru. Karnataka Chief Secretary Dr. Shalini Rajneesh has called upon law enforcing agencies to implement Karnataka's cyber security policy with greater alacrity. Speaking at the meeting headed by her in Bengaluru yesterday, she said along with implementation of the policy, there is also a need to create awareness about the cyber crimes and ways to prevent them among the masses. She said today's youth should be educated about cyber security and taught in schools and colleges. She urged the educational institutions to teach children below the age of 18 about the adverse impact of social media on their psyche. The substance abuse and its ill effects are increasing among them. She assured the law enforcing agencies that sufficient manpower and financial support will be extended for them to enforce the Karnataka cyber security policy. She told them to approach Google, Meta, Facebook, Microsoft, YouTube and similar companies and identify the child sexual abuse materials and remove them from the sites. Those children falling prey to substance abuse have to be rehabilitated. She also directed them to be in touch with banks to curb cyber frauds. She said that the cyber crime safe campus awareness campaigns of colleges should be emulated by schools too. Now let's turn our attention to Hyderabad. Chief Minister Revanth Reddy reiterated yesterday that the Telangana Tali, mother of Telangana, statue will be installed in the Secretariat premises on December 9 this year. The Chief Minister inspected the State Secretariat premises to identify the best location for the installation of the statue. He said that the Secretariat, the seat of power in Telangana, is the most appropriate location to honour the mother of Telangana with pride and respect. The Chief Minister held discussions with officials regarding the statue's placement and the overall design of the surrounding area. He emphasized that the statue should reflect the rich culture of Telangana. Chief Minister directed officials to prepare comprehensive plans for the installation, ensuring that every detail is carefully considered to appropriately honour the mother of Telangana. So these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Devendra, what are the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata?
Ji Shagun. चंद्रयान तीन की सफल लैंडिंग की पहली वर्षगांठ के अवसर पर देशभर में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है और इसी श्रृंखला में राजधानी के जामिया मिलिया इस्लामिया के रसायन विज्ञान विभाग द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष अभियानों के बारे में युवाओं को प्रेरित करना है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान तीन ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने देशभर के शैक्षणिक संस्थानों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का आह्वान किया है। यह दिवस अंतरिक्ष अन्वेषण में देश की उल्लेखनीय उपलब्धियों का सम्मान करता है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भविष्य की प्रगति को प्रेरित भी करता है। चंद्रयान तीन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जो देश की उन्नत तकनीकी शक्ति और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मोती नगर विधानसभा में दो नए मोहल्ला क्लीनिकों का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही शहर में मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या बढ़कर 545 हो गई है। इस दौरान श्री भारद्वाज ने मोहल्ला क्लीनिक का दौरा किया और मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर श्री भारद्वाज ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सभी मोहल्ला क्लीनिकों में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इलाज कराया है, जहां सभी तरह का इलाज मुफ्त में किया गया है। और चलते हैं मुंबई की तरफ, जहां मुंबई विश्वविद्यालय ने अपने सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से स्नातक कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी अधिसूचना के अनुसार पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mu.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है। इस वर्ष विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष के बीए, बीकॉम लेखा और वित्त, बीएससी सूचना प्रौद्योगिकी और बीएससी कंप्यूटर विज्ञान कार्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा विकल्प प्रदान कर रहा है। और मुंबई में लंबे समय के सूखे मौसम के बाद मंगलवार को सुबह के समय बारिश की वापसी हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। शहर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है। और अब बात कोलकाता से जुड़ी, आरजीकर अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने स्वागत किया है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने मंगलवार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सकारात्मक और वैज्ञानिक बताया। भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और कोलकाता पुलिस आयुक्त को हटाने की मांग की है। भाजपा ने आरजीकर पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर कोलकाता के आसपास विभिन्न जगहों पर विरोध रैलियों का आयोजन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की तैनाती के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दूसरी ओर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने मोबाइल कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इसके नम्बर हैं 03322001641 और 92890010682। इन नंबरों पर कोई भी व्यक्ति डायल करके आरजीकर घटना के बारे में जानकारी दे सकता है। मोबाइल कंट्रोल रूम से पहला कॉल कल राज्यपाल ने आरजीकर पीड़िता के पिता को किया था। महानगरों से जुड़ी खबरों के बाद अब महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल सुबह शगुन दिल्ली में बहुत अच्छी बारिश हुई थी जिससे मौसम ठीक हुआ था और दिन में तापमान 33 डिग्री और सुबह का तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। मुंबई में भी जैसा कि खबर में पढ़ा आंशिक बादल छाने और कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। तापमान 28 और 32 डिग्री के बीच रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ मध्यम से तेज बौछारें पड़ सकती हैं। यहां पर तापमान 32 डिग्री दिन में जा सकता है जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज। बेंगलुरु अगेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 21 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 31 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद अगेन वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द टेम्परेचर विल हैव अ बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 23 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस।
जी, तो जिन छह महानगरों का मौसम का हाल हमने बताया, सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। उम्मीद करते हैं कि आप जहां से भी ये कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं आपके क्षेत्र में भी बारिश होगी और मौसम अच्छा रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इतिहास में दर्ज आज के दिन की कुछ विशेष घटनाओं का, जिन घटनाओं का प्रभाव इतिहास में रहा और इतिहास का हिस्सा बना। आज ही के दिन वर्ष 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल R-7 सेमेयोर्क का परीक्षण किया था।
इन 1980 पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स वॉज फाउंडेड।
जी, वर्ष 1959 में हवाई अमेरिका का 50वां प्रांत बना था और 1965 में यूरोपीय देश रोमानिया में संविधान को अंगीकार किया गया था।
In 1988, 500 people were killed near the Nepal border in an earthquake measuring 6.7 on the Richter scale.
जी, और इससे दो साल पहले शगुन 1986 में एक घटना कैमरून में हुई थी ज्वालामुखी विस्फोट से, और यहां से निकली जहरीली गैसों के प्रभाव में आने से 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी।
In 1990, प्रसार भारती बिल वॉज मूव्ड इन द लोकसभा।
और इससे पहले 1972 में भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी संसद में पारित हुआ था आज ही के दिन।
इन 1997 कृष्ण कांत अज्यूम्ड ऑफिस एज 10th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
लातविया ने संयुक्त सोवियत संघ रूस से अलग होने की घोषणा आज ही के दिन 1991 में की थी और 2008 में मून मिशन पर भारत ने नासा से हाथ मिलाया था।
In the year 2018, water ice was first detected on Moon by India's Chandrayaan-1 spacecraft.
जी, और अब समय है उन महान लोगों के स्मरण का जिनके कार्यों और विचारों से पीढ़ियां प्रेरणा लेती हैं। खगोल भौतिक शास्त्री और सन 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को हम आज याद कर रहे हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है। नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के भतीजे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की शिक्षा चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। बाद में डॉ चंद्रशेखर अमेरिका गए जहां उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो सीमा निर्धारित की उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला। 20वीं शताब्दी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन गए थे। उनका जीवन उन्नति का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसे कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है बशर्ते उसमें संकल्प शक्ति योग्यता और धैर्य हो। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिसमें भारत जहां उनका जन्म हुआ, इंग्लैंड और यूएस की तीन अत्यधिक भिन्न संस्कृतियों की जटिलताओं द्वारा आकार मिला.
Well, a couple of points that I would also like to add. Subramaniam Chandrasekhar, he published 10 books and served as the editor of the prominent astrophysical journal for 19 years. In the year 1999, 4 years after his death in August of 1995, NASA launched Chandra, an X-ray observatory named in honor of Subramaniam Chandrasekhar. The observatory studies the universe in the X-ray portion of the electromagnetic spectrum.
Ji.
Well, we are also remembering Ram Narayan Vishwanath Pathak, Gujarati poet and writer. He wrote criticism, poetry, drama, metrics and short stories. He edited and translated literary works. He was appointed the president of Gujarati Sahitya Parishad in the year 1946.
पराधीन भारत की स्वाधीनता के लिए सशस्त्र संघर्ष के पक्षपाती प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद पत्रकार और लेखक काका कालेलकर की भी आज पुण्यतिथि है. काका कालेलकर ने 1915 में गांधीजी से मिलने के बाद अपना पूरा जीवन गांधीजी के कार्यों को समर्पित कर दिया था. 1922 में गुजराती पत्र नवजीवन के संपादक रहे. गांधीजी के नेतृत्व में आजादी के लगभग सभी आंदोलनों में काका कालेलकर ने भाग लिया. 5 वर्ष कैद में बिताए. मराठी भाषी काका साहेब ने राष्ट्रभाषा हिंदी की भी सेवा की. शिक्षा, साहित्य, संस्कृत भाषा आदि के क्षेत्रों में उनके योगदान महत्वपूर्ण है और भाषाओं पर उनकी दक्षता के चलते ही उन्हें विश्वकोश भी कहा जाता था. राजनीति, समाजशास्त्र, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, अध्यात्म आदि कोई भी ऐसा विषय नहीं था जिस पर उन्होंने प्रामाणिक लेखन न किया हो. वे किसी बात का ज्ञान प्राप्त करने मात्र से संतुष्ट नहीं होते थे बल्कि वो मौलिक दृष्टि से चिंतन भी करते थे. उनकी स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत थी. काका साहेब कलासक्त और सौंदर्य प्रेमी थे. उनके हर काम में सहज कला होती थी. उनके द्वारा लिखे साहित्य प्रेरक विचारों का एक विशाल भंडार है और विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्यों की विशालता के चलते उन्हें एक संस्था के रूप में माना जाता है.
Today, we're also remembering, as Devendra already told you in the beginning, Ustad Bismillah Khan. He is credited with popularizing the shehnai, which is a reeded woodwind instrument. He played it with such expressive virtuosity that he became a leading Hindustani classical music artist. His name was indelibly linked with the woodwind instrument. While the shehnai has importance as a folk instrument played primarily by musicians schooled in traditional ceremonies, he is credited with bringing it to the concert stage.
जी, बिस्मिल्लाह खान shehnai में ऐसे रमे कि वो स्वयं इसके पर्याय बन गए. उन्होंने shehnai को सम्मान दिलाया. उन्होंने shehnai को दुनिया भर में लोकप्रिय कराया. जैसा कि शगुन ने भी बताया, वर्ष 1947 में देश जब आजाद हो गया था और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर लाल किले पर भारत का तिरंगा शान से फहरा रहा था, तब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई भी वहां से देश को आजादी का संदेश दे रही थी. कुछ विभूतियां और उनके कार्य किसी सम्मान के मोहताज नहीं होते. हालांकि उनके कार्यों को भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया. इसके अलावा उन्हें रोस्तम पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और तानसेन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है. बिस्मिल्लाह खान ने संगीत की जटिल रचनाओं को सरल बनाया, उसमें बदलाव करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समारोहों में प्रस्तुतियां दी और उन्हें धार्मिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता था. उन्होंने 1966 से पहले अन्य देशों में प्रदर्शन करने के निमंत्रण ठुकरा दिए, लेकिन जब भारत सरकार ने उन्हें जोर देकर कहा तब वे एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में प्रस्तुति देने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने भारत के बाहर दुनिया के कई देशों में शहनाई से लोगों को मुग्ध किया. आज ही पुण्यतिथि है भारतीय साहित्य के सशक्त कहानीकार इस्मत चुगताई की. उन्होंने अपनी रचनाओं में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को बेबाकी से उठाया और पुरुष प्रधान समाज में ऐसे विषयों को चुटीले और संजीदा ढंग से पेश किया. आलोचकों के अनुसार इस्मत चुगताई ने शहरी जीवन में महिलाओं से जुड़े विषयों पर सरल, प्रभावी और मुहावरेदार भाषा में ठीक उसी प्रकार से लेखन किया जैसे प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन के पात्रों को जीवंत किया था. इस्मत के अफसानों में औरत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है. इस्मत चुगताई ने ठेठ मुहावरेदार गंगा जमुनी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे हिंदी उर्दू की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता. उनका भाषा प्रवाह अद्भुत था. उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं लिहाफ, टेढ़ी लकीर, एक बात, कलियां, जंगली कबूतर, एक कतराए खून, दिल की दुनिया, बहरूप नगर और छुई मुई। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जिनमें शामिल हैं गालिब अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इकबाल सम्मान, नेहरू अवार्ड और मखदूम अवार्ड।
Well, today it's also the birth anniversary of Kenny Rogers. He's a country musician. He's known for his raspy voice and multiple hits such as Lady, The Gambler, Lucille and Through the Years. His band Kenny Rogers and the First Edition played a mix of country, pop and psychedelic music and has had hits such as Just Dropped In, Ruby, Don't Take Your Love to Town, Reuben James and Something's Burning. And listeners, for you, we have the song Through the Years to listen to.
The sweetest days I found with you. Through the years I've never been afraid. I've loved the life we've made. And I'm so glad I stayed right here with you. Can't remember what I used to do.
और हम याद कर रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की महान विभूतियों में से एक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को। आज उनकी पुण्यतिथि है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शास्त्रीय संगीत के एक विशिष्ट प्रतिभा थे, जिनका भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा। समर्थ संगीत गुरु, अप्रतिम कंठस्वर एवं गायन कौशल के धनी भक्त हृदय गायक थे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं सहित विभिन्न मंचों पर रामधुन गाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को भी लोकप्रिय किया। पलुस्कर ने लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कर भारतीय संगीत को एक विशिष्ट स्थान दिलाया। उन्होंने संगीत, बाल बोध, वल्पालाप गायन, संगीत तत्वदर्शक, राग प्रवेश तथा भजनामृत लहरी नामक पुस्तकों की रचना की, जो उनके बाद पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय रही।
Well, we're also remembering Robert Arthur Moog, American engineer and electronic music pioneer. He was the founder of the synthesizer manufacturer Moog Music and the inventor of the first commercial synthesizer, which is called the Moog synthesizer. In the year 1964, he introduced the first complete voltage-controlled modular synthesizer, an instrument capable of producing a wide variety of electronic sounds. The Moog synthesizer helped revolutionize the face of music by giving artists and composers the capability to create a brand new palette of sounds.
भारत के प्रसिद्ध चित्रकार कृष्ण कन्हाई का जन्मदिन है। वो चित्रांकन, यथार्थवादी, समकालीन चित्रों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। साथ ही राधा कृष्ण के चित्रों के माध्यम से भी वो अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। कृष्ण कन्हाई कला और सोने की पत्तियों, रत्नों का उपयोग करके पेंटिंग बनाने की पारंपरिक पद्धति में निपुण है। वर्ष 2004 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चित्रकार कृष्ण कन्हाई का जन्म 21 अगस्त 1961 को उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल वृंदावन में हुआ था और उन्होंने अपने पिता से चित्रकारी कला सीखी। उन्होंने हाल ही में संसद के केंद्रीय कक्ष के लिए भारत रत्न प्राप्त दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक आदमकद चित्र बनाया, जिसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में किया गया था। कृष्ण कन्हाई का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की गोल्डन एडिशन 2020 में शामिल किया गया।
Well, today it's also the birth anniversary of jazz pianist, organist, band leader and composer Count Basie. He is considered one of the greatest band leaders of all times. He was the arbiter of the big band swing sound, and his unique style of fusing blues and jazz established swing as a predominant music style. He changed the jazz landscape and shaped mid-20th century popular music. And for you listeners, we have this track, All of Me.
श्रोताओं, समय है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए देवेंद्र त्रिपाठी और शगुन चोपड़ा को आज सवेरे कार्यक्रम यही संपन्न करने की, लेकिन आप लगातार सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
वेल स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।